अशुपति की योग यात्रा पूर्ण होती है श्री माँ के दर्शन और उनके वरदान प्राप्ति के बाद। यह तप, घोर तप, ये द्रुह योग यात्रा अशुपति किसी व्यक्तिगत कामना, यहाँ तक कि मोक्ष तक की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर एक ही भाव है कि इस पृथ्वी का, पार्थिव जगत का, मानव जाति का कल्याण कैसे हो, और सीमा का तथास्तु उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप सीमा कहती हैं कि निश्चित रूप से मैं आऊँगी और अवतरित होकर मनुष्यों के मध्य मनुष्यता का और पार्थिव जगत का, धरती का कल्याण करूँगी। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था और इसके आगे ठीक वैसे जैसे एक मंत्र धीरे धीरे धीमी गति में स्पंदन उसके पार्श्व में चले जाते हैं, पृष्ठभूमि में चले जाते हैं, या एक सुंदर सा चित्र धीरे 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 खो जाता है लेकिन अपनी छाप कहीं ना कहीं हमारे मन पे छोड़ जाता है और कहीं ना कहीं मंत्र हमारे अवचेतन मन में प्रतिध्वनित होता रहता है। उसी प्रकार से अशुपति अब उस उच्चतम लोक से जहाँ उन्होंने माँ भगवती का दर्शन किया है वापस आते हैं हम सब के बीच। और ये जैसा कि हम जानते हैं श्री अरविंद की ही कहानी है, अशुपति श्री अरविंद ही हैं। वंस मोर ही मूव्ड एमिड मटेरियल सीन्स, लिफ्टेड बाय इंटीमेशंस फ्रॉम द हाइट्स एंड इन द पॉजेस ऑफ द बिल्डिंग ब्रेन, टस्ट बाय द थॉट्स दैट स्किम द फैदमलेस सर्ज ऑफ नेचर एंड विंग बैक टू हिडन शोर्स। तो उनकी आंतरिक अवस्था का वर्णन है। इस अद्भुत दर्शन करने के बाद आमतौर पर हम लोग इस जेल में बंद रहते हैं, जड़ तत्व की जेल, किंतु अशुपति ने वह सब कुछ देख लिया जो इसके परे है। और इसके बाद जब वो हम सब के बीच में आते हैं तो श्री अरविंद कहते हैं हालांकि एक भाग उनका धरती से जुड़ा हुआ है किंतु बीच बीच में इंटीमेशंस फ्रॉम द बियॉन्ड, ऊपर से अनेकों रूप में उनके अंदर उनको ऊपर ले जाने के लिए, उठाने के लिए देवताओं की वाणी, उच्च जगत के स्पंदन, ये उनके जीवन की आम बातें हो गई हैं। और अब उनके अंदर जो विचार आते हैं, जो थॉट्स उठते हैं, हम लोगों के जो थॉट्स होते हैं वो बद्ध मनुष्य के थॉट्स हैं, वो एक ही सीमा के अंदर हम लोगों को घुमाते रहते हैं। चाहकर भी हम उस सीमा का अतिक्रमण नहीं कर पाते, किंतु अशुपति योग तप द्वारा श्री माँ की कृपा के कारण उन्होंने वो रेखा तोड़ दी है। तो उनके अंदर भी विचार उठते हैं किंतु ये विचार अन्य प्रकार के हैं, एक अन्य भूमि से आते हैं और एक अन्य दिशा में संकेत करते हैं। द इटर्नल सीकर इन द एओनिक फील्ड, बिसीज्ड बाय द इनटॉलरेंट प्रेस ऑफ आवर्स, अगेन वॉज स्ट्रॉन्ग फॉर हर स्विफ्ट फुटेड डीड्स। अवेक बीनीथ द इग्नोरेंट वॉल्ट ऑफ नाइट ही सॉ द अननंबर्ड पीपल ऑफ द स्टार्स। फिर से एक बार तप की पूर्ति के बाद, सिद्धि प्राप्त करने के बाद, फिर से इस धरती पर बाहर के जगत में कार्य करने के लिए अशुपति तत्पर हैं और प्रस्तुत हैं। और वे क्या देखते हैं अपने चारों तरफ? अननंबर्ड पीपल ऑफ द स्टार्स। इस अज्ञान की भूमि पर अनेकों अनेकों मनुष्य जो अज्ञान में अपना जीवन जी रहे हैं और उनके अंदर अनेकों प्रकार के प्रश्न उठते हैं, और प्रश्न भी अज्ञान के होते हैं और उनके उत्तर भी अज्ञान से भरे होते हैं। तो हम लोगों के प्रश्न और उत्तर दोनों में ही अज्ञान झलकता है। एंड हर्ड द क्वेश्चनिंग ऑफ द अनसेटिस्फाइड फ्लड एंड टॉयल्ड विद द फॉर्म मेकर मेजरिंग माइंड। क्योंकि मन की भूमि पर कोई भी समुचित उत्तर हो नहीं सकता, प्रश्न ही प्रश्न है, किंतु उनका समुचित उत्तर मनातीत अवस्था में ही प्राप्त किया जा सकता है। ए वांडरर फ्रॉम द ऑकल्ट इनविजिबल सन्स एकॉम्प्लिशिंग द फेट ऑफ ट्रांजिएंट थिंग्स। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं ये कि वैसे तो अशुपति मानव देह में है किंतु वास्तव में वो इस लोक के निवासी नहीं है, मूलतः और वो निवासी सूर्य के हैं, सूर्य लोक से वो धरती पर आए हैं और वांडरर है, वहाँ से घूमते हुए इस धरती पर आए हैं। लेकिन उनकी मूल प्रकृति, उनकी उनका मूल निवास स्थान सूर्यलोक ब्रह्मलोक है। एक भजन है ना जो हम लोग माता जी के उसमें सुनते हैं, ब्रह्मलोक से जन्म लिया धरती पर आई, तो वही इसी सत्य को श्री अरविंद सावित्री में बता रहे हैं। ए गॉड इन द फिगर ऑफ द एरिजन बीस्ट, मनुष्य क्या है, एक पशु का एक थोड़ा अच्छा उसमें अपग्रेडेड वर्जन है। एरिजन इन द फिगर ऑफ द एरिजन बीस्ट, बीस्ट क्या है, वो धरती की ओर मुंह किए रहता है, औंधा पड़ा रहता है, चतुष्पाद है, लेकिन मनुष्य क्या है, उसके शरीर को भी अगर हम देखें तो एरिजन बीस्ट है पशु, किंतु खड़ा हो गया है, ऊपर की ओर देखता है, चारों तरफ देखता है। और ये सांकेतिक रूप से भी है कि मनुष्य के अंदर पशुत्व अपने ही अंत को, अपने ही निष्कर्ष को पहुंचना चाहता है, लेकिन अशुपति के अंदर अब इस अर्ध मनुष्य अर्ध पशु की देह में एक देवत्व प्रकट हो गया है। He raised the brow of conquest to the heavens, establishing the empire of the soul. शायद यही इस कहानी का एक संकेत, जो नरसिंह अवतार की मनुष्य और पशु की देह है, किंतु उसके अंदर में एक देवता प्रकट हो रहे हैं और स्वर्ग की ओर मनुष्य के लिए उसकी विजय यात्रा की ओर तैयारी करते हैं। Establishing the empire of the soul on matter and its bounded universe as on a solid rock in infinite seas. The Lord of life resumed his mighty rounds in the scant field of the ambiguous globe. End of book 3, canto 4. यहाँ हम लोगों ने समाप्त किया था, यहाँ अशुपति का योग समाप्त हो जाता है और एक नए योग, एक नई दिशा, एक नई धारा, एक नई चेतना का जन्म होगा। माँ भगवती के आने की अब तैयारी होगी। माँ भगवती ने आश्वासन दिया है, तथास्तु कहा है कि वे धरती पर प्रकट होंगी, लेकिन उस तथास्तु और आने के बीच में अब पृथ्वी को तैयार होना है। ये एक प्रकार से इसका भी संकेत है अब जो आने वाला है, कि अक्सर लोग कहते हैं श्री अरविंद सुपर माइंड की बात करते हैं, सुपर माइंड कहाँ है, तो धरती पर इवन मनुष्य का जो जन्म होता है, उस जन्म के पहले देखिए कितनी तैयारियां होती हैं, शादी होती है, शादी के बाद एक तैयारी होती है, एक मनोवैज्ञानिक रूप से पुरुष और स्त्री को तैयार होना होता है, उसके बाद जब गर्भ में भीग जाता है, उसके बाद भी 9 मास लगते हैं शिशु के आने में, तो उसी प्रकार से एक अंतराल होगा जिसमें मनुष्य तैयार होगा। और यहाँ बुक पार्ट 2, बुक 4, कैंटो 1, इसमें श्री अरविंद ने बड़े अद्भुत ढंग से प्रकृति के ही चित्रों को लेकर, ऋतुओं को लेकर इस तैयारी की ओर संकेत किया है। पहले भी हम लोग देखते हैं कि जब भगवान के अवतरण की बात होती है तो प्रकृति के दृश्यों द्वारा उसको सांकेतिक रूप से प्रकट करने की चेष्टा की जाती है। और सबसे फेमस जो स्टोरी है वो तो श्री कृष्ण अवतार की है, कि नदी में उफान था, चारों तरफ जैसे बाढ़ आने वाली है और बारिश सब जगह सब कुछ डुबो रही थी, मानो एक पुराना जगत डूबने वाला था, और श्री कृष्ण अपने चरणों से उसको बस दबा के रखे हुए हैं कि अब एक नए जगत का आविर्भाव होना है। तो ये एक सांकेतिक रूप में बड़े सुंदर ढंग से ऋषियों ने कृष्ण अवतार का वर्णन किया है। श्री अरविंद उसी प्रकार से ऋतुओं का वर्णन करते हुए मनुष्य का जीवन, सामूहिक जीवन, इन सब के बारे में बहुत सारे सत्य प्रकट करते हैं। कैंटो 1, द बर्थ एंड चाइल्डहुड ऑफ द फ्लेम, हम लोग कहते हैं देह का जन्म, लेकिन वास्तव में देह का जन्म नहीं होता है, आत्मा का जन्म होता है जो देह के अंदर अपने को जोड़ती है। तो यहाँ बड़ा सुंदर है, द बर्थ एंड चाइल्डहुड ऑफ द फ्लेम, शिशु रूप में श्री माँ का जन्म। और पहली ही 4-5 पंक्तियाँ अद्भुत हैं। ए मीनर्ड ऑफ द साइकिल्स ऑफ डिजायर अराउंड ए लाइट शी मस्ट नॉट डेयर टू टच, हिसनिंग टुवर्ड्स ए फार ऑफ अननोन गोल, अर्थ फॉलोड द एंडलेस जर्नी ऑफ द सन। मीनर्ड एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, ये ग्रीक मिथोलॉजी से आता है, और मीनाड उसको कहा जाता था जो डायनिशियन, जिनकी बात हम लोगों ने पहले भी की है, जो आनंद मार्गी थे, आनंद के पथ पर चलने वाले डायनिशियन, उनमें जो स्त्रियां होती थी उनको मीनाड कहा जाता था। क्यों? वे आनंद से विभोर होकर पागलों की तरह घूमती रहती थी, और कई लोग उनको कहते थे पागल हैं, जैसे लोग गोप गोपियों को कहते थे पागल, तो पागल हैं क्या, कृष्ण का नाम रट के सारा दिन घूमती रहती हैं, ना उनको होश है अपने वस्त्रों का, ना लोकाचार का, ना कर्तव्य का, ये तो केवल कृष्ण की धुन में पागल हैं। तो अगर ये ग्रीस में श्री कृष्ण जन्मे होते तो गोप गोपियों को कहा जाता मीनाड, पागलों की तरह भाव विभोर होकर, उन्मत्त होकर धरती घूम रही है। क्यों घूम रही है? अंदर में उसको पता चल गया है कि एक नए प्रकाश का अवतरण होने वाला है। तो ए मीनाड ऑफ दी साइकिल्स ऑफ डिजायर, इस प्रकाश के लिए उसने ना जाने कितनों युगों युगों तक डिजायर किया है कि एक दिन मेरी जो माँ है वे मेरे अंदर संतान के रूप में प्रकट हों। तो सारी सृष्टि की माँ तो जगत जननी है, वो धरती के अंदर गर्भ से पैदा हो, ये बहुत एक आनंद का विषय है। तो धरती पागलों की तरह घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का चक्कर, क्योंकि वहाँ से उस प्रकाश को आना है। और देखिए बाहर से भी इसका संकेत है, पुरुष की ऊर्जा सूर्य के रूप में और धरती के रूप में स्त्री की ऊर्जा, और ये दोनों ऊर्जाएं मिलकर धरती के अंदर ऋतु और ऋतुओं के साथ साथ जीवन का संचार करती हैं। सेम एक्सप्रेशन कम्स हियर। और वास्तव में इसको देखकर हम लोग सत्य रूप में ये कह सकते हैं, और सत्यकाम जाबाली की जो कहानी है उसका एक नया अर्थ प्रकट होता है, जब सत्यकाम की माँ जाबाली से सत्यकाम प्रश्न करते हैं कि माँ मेरे पिता कौन हैं, तो जाबाली कहती हैं कि माँ तो मैं हूँ पर तेरे पिता के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकती, अनेक पिता हो सकते हैं। वास्तव में हम सब की माँ एक होती है, पिता अनेक होते हैं। और यहाँ इसका वर्णन है, माँ ओरिजिनल माँ धरती है लेकिन पिता सूर्य भी हैं, वायु भी हैं, वरुण भी हैं, और ये सब मिल करके धरती के अंदर इस गर्भ को पोषित करते हैं। यही शायद महाभारत की कहानी में भी माता कुंती और अनेकों पिता जो पांडवों के हैं। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर काट रही है, एंडलेस जर्नी, इस एक कामना को अंदर लेकर कि एक दिन मेरे अंदर एक नव प्रकाश का जन्म होगा। और जब वो जानती कि नए प्रकाश आने वाला है तो पागलों की तरह चक्कर काट रही है। ए माइंड बट हार्ट हाफ अवेक इन द स्विंग ऑफ द वॉइड ऑन द बूजम ऑफ इनकॉन्शियंस ड्रीम्ड आउट लाइफ एंड फ्रॉम दिस फाइनाइट वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड डीड across the immobile trance of the infinite, a vast, immutable silence with her ran. बहुत सुंदर ये वर्णन है। कल्पना हम करें कि पृथ्वी चक्कर काट रही है, अब किस चीज़ के ऊपर चक्कर काट रही है, किस चीज़ के ऊपर थमी हुई है? तो श्री अरविंद वर्णन कर रहे हैं कि अप्रकृतिम सलिलम, जिसकी बात ऋग्वेद में कही हुई है, इनकॉन्शियंट ओशियन, शीर सागर, शीर सागर के ऊपर अनंत नाग और अनंत नाग के ऊपर पृथ्वी। तो ये अनंत नाग, वह अनंत ऊर्जा जिसने स्वयं को निश्चेतना के रूप में उसने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, और उसके ऊपर पृथ्वी चक्कर काट रही है मानो एक ट्रांस की अवस्था में। और इसी ट्रांस के अंदर जैसे स्वप्न जगत में अनेकों चीज़ें प्रकट होती हैं, उसके अंदर स्वप्न रूप में अनेकों चीज़ें प्रकट हो रही हैं। प्रिजनर ऑफ स्पीड अपॉन ए ज्वेल्ड व्हील, अब कोई चीज़ अगर चक्कर काट रही है तो व्हील जो होता है, पहिया होता है, तो उसके स्पोक्स होते हैं, सेंटर होता है, तो सेंटर तो सूर्य है और उसके जो स्पोक्स हैं उसको श्री अरविंद वर्णन करें ज्वेल्ड व्हील। अब ये ज्वेल्ड ज्वेल्स कौन से हैं पृथ्वी के साथ जड़े हुए, रत्न कौन से हैं? ये तारे, सारे नक्षत्र। केवल पृथ्वी नहीं चक्कर काट रही है, पृथ्वी के साथ साथ ये सारे ग्रह भी चक्कर काट रहे हैं। तो वो सब श्री अरविंद बताते हैं ज्वेल्ड व्हील। तो उस प्रकार से अगर हम वास्तव में इसको फास्ट मोशन फोटोग्राफी में देखें, ये इमेजेस आती हैं और बहुत अद्भुत हैं, कि जब सूर्य भी गतिशील है तो सूर्य की गति सीधी नहीं होती है, सूर्य के अंदर एक वेव लाइक की गति होती है और उसके अंदर ध्वनि भी है, और ऐसा कहते हैं कि उसकी जो ध्वनि है सूर्य की वो ओम से मिलती जुलती है। और उसके चारों तरफ ये जो पृथ्वी और उसके साथ सारे नक्षत्र जो ग्रह हैं वो चक्कर काट रहे हैं, अगर इसको फास्ट मोशन फोटोग्राफी में देखें तो ऐसा ही लगेगा कि कोई पहिया घूम रहा है स्पेस में अनंत काल से, जिसके केंद्र में स्वयं सूर्य है और पृथ्वी पर एक घटना घटित होने वाली है, इसलिए ये सारा पहिया कालचक्र घूम रहा है। शी कम्यून्ड विद द मिस्टिक हार्ट इन स्पेस एमिड द एम्बिगुअस स्टिलनेस ऑफ द स्टार्स शी मूव टूवर्ड्स सम अनडिस्क्लोज्ड इवेंट। सारे नक्षत्र देख रहे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, पृथ्वी के लिए वो अनडिस्क्लोज्ड इवेंट है, तारों ने उनको पढ़ लिया है, जान लिया है, भांप लिया है, और वे अब अपनी गति को संयोजित कर रहे हैं कि हम इस घटनाक्रम के अनुरूप हम अपने आप को सुनियोजित करें। ये बड़ी सुंदर श्री अरविंद की वैसे किसी ने जन्मपत्री बनाई थी, तो जब वो जन्मपत्री देखी श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त और उस समय जो सुबह सुबह 4:00 का समय था, तो जन्मपत्री जब देखी, एक बड़े फेमस ज्योतिष थे नारायण ज्योतिष, उनके नाम से बहुत सारे ज्योतिषालय बाद में खुले, ओरिजिनल लेकिन वो थे, बाद में जो खुले वो तो जैसे भृगु संहिता बहुत सारे खुल गए, लेकिन जो ओरिजिनल नारायण ज्योतिष थे उनकी बात है कि जब उन्होंने श्री अरविंद की जन्मपत्री देखी, काफ़ी सिद्ध ज्योतिष थे, तो उन्होंने देख कर कहा ये तो भगवान की जन्मपत्री है, ये एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, ये तो भगवान की जन्मपत्री है। तो ये केवल एक कहानी नहीं है, ये इस बात की पुष्टि स्वयं श्री अरविंद करते हैं, उसमें वो नाम नहीं बताते हैं ज्योतिष का और कैसे ज्योतिष, लेकिन साथ ही वो प्रेडिक्ट करते हैं कि लेकिन बहुत वर्ष तक इनके लिए पृथ्वी पर रहना कठिन होगा क्योंकि धरती जोड़ नहीं पाएगी, हर प्रकार की जो रोग हो सकता है ये इनके शरीर में प्रकट होगा, ये दोनों बातें एक साथ प्रकट की, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। और श्री अरविंद कहते हैं कि दूसरा प्रेडिक्शन पहले प्रेडिक्शन के कारण कैंसिल हो गया, जब स्वयं उतनी विशाल आध्यात्मिक चेतना देह में जन्म लेगी। पर वो कहते हैं कि एक हद तक ये सही था कि मेरे शरीर के अंदर कोई ऐसा रोग नहीं जो मेरे शरीर में प्रकट नहीं हुआ, और माता जी के साथ भी यह सत्य है, उन्होंने सब कुछ अपने शरीर के अंदर, तो उसका वर्णन है कि तारे नक्षत्र देख रहे हैं कि धरती के अंदर एक घटना होने वाली है। जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय भी आता है कि वो 3 मैगी आते हैं जो ऋषि हैं, और वो अपने हाथ में 3 फूल लेकर के आते हैं, और उस समय तारों की गति, ये सब वर्णन है बाइबल में, तो प्रकृति के माध्यम से महत सत्य को बताने की चेष्टा है। शी मूव टुवर्ड्स सम अनडिस्क्लोज्ड इवेंट एंड अ रिदम मेजर्ड द लॉन्ग वर्ल ऑफ टाइम इन सीजलेस मोशन राउंड द पर्पल रिम। अब पहिए का पूरा वर्णन समाप्त होने वाला है, तो पहिए के स्पोक्स होते हैं, तो स्पोक्स क्या हैं? डे आफ्टर डे स्पेड बाई लाइक कलर्ड स्पोक्स एंड थ्रू ए ग्लैमर ऑफ शिफ्टिंग यूज ऑफ एयर द सीजन्स ड्रू इन लिंक्ड सिग्निफिकेंट डांस द सिंबल पेजेंट ऑफ द चेंजिंग ईयर। अब धरती जब घूम रही है, काल का पहिया घूम रहा है, तो उसके जो स्पोक्स हैं, क्या कहेंगे स्पोक्स को, जो पहिए के अंदर जो उसको होल्ड करके रखते हैं, उसका वर्णन श्री अरविंद कहते हैं वो अपना रंग बदलते रहते हैं, काल की गति जैसे जैसे चेंज होती है धरती के ऊपर उनके रंग बदलते रहते हैं। ये भी बड़ा अद्भुत दृश्य है, अगर फास्ट मोशन फोटोग्राफी में धरती पे हम सीजन्स को देखें और चंद्रमा की गति को देखें, तो ऐसा लगेगा कि चंद्रमा जैसे जैसे पृथ्वी का चक्कर काटता है वो समुद्र को उखाड़ता हुआ लेकर के जाता है, ऐसा इमेज है, मानो वो धीरे 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 समुद्र को ऊपर से आवरण हटाता जा रहा है। फिर अगर फास्ट मोशन में देखें तो ऐसा प्रतीत होगा कि धरती शीघ्र नए नए वस्त्र बदल रही हैं। एक बार यहाँ दिखाना चाहिए सुशील, ऑन यू नो वी शुड शो इट, इट्स एन अमेजिंग इमेज अलॉन्ग विद दीज लाइन्स। अब ये ऋतुओं का वर्णन है कि ऋतुएं इस प्रकार से धरती माँ के ऊपर प्रकट होती हैं। सबसे पहले कौन सी ऋतु, क्यों, ग्रीष्म ऋतु। क्यों? क्योंकि माता जी का जन्म वसंत ऋतु में हुआ है, तो प्रारंभ कहाँ से होगा? ग्रीष्म ऋतु से। और ग्रीष्म ऋतु कौन सी ऋतु है? वो ऋतु है जहाँ कई चीज़ों को, वो बोने की ऋतु है, मेहनत की ऋतु है, भूमि को तैयार करने की ऋतु है। वो एक ऐसी ऋतु है जहाँ आशा भरी होती है, दिन लंबे होते हैं और मेहनत, पसीना, अगर आप मेहनत नहीं भी करोगे तो पसीना आएगा, वो ऋतु ही ऐसी है। तो ये ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। सबसे पहले, अक्रॉस द बर्निंग लैंगर ऑफ द सॉइल पेस्ट समर विद हिज पॉम्प ऑफ वायलेंट नून्स। तो सबसे पहले कौन सी ऋतु आती है? एक जुलूस चल रहा है, परेड चल रही है, तो समर कहती है ग्रीष्म ऋतु, मैं आऊंगी सबसे पहले। तो वो कैसे आती है? अपने वायलेंट नून्स, मानो किसी ने अपने हाथ में बर्छा भाला इस प्रकार से लिया हुआ है, वैसे वो अपनी दोपहर को लेकर के आती है। एंड स्टैम्ड हिज टिरनी ऑफ टॉरिड लाइट एंड द ब्लू सील ऑफ ए ग्रेट बर्निश्ड स्काई। आकाश चमकने लगता है जब ग्रीष्म ऋतु आती है परेड करने, धरती फटने लगती है, सूखने लगती है, उसको पता चल रहा है कि कौन आ रहा है, ग्रीष्म ऋतु आ रही है, सब कुछ दैदीप्यमान हो जाता है। ये महाभारत में वर्णन है ना कि जब सारे पांडु पुत्र कौरव लौटते हैं शिक्षा प्राप्त करके द्रोणाचार्य से, तो पहले तो उनका बाहर का वर्णन है, फिर उनका दूसरा वर्णन आता है। तो जब भीम प्रवेश करते हैं तो उनके पदचाप से धरती कांपने लगती है कि भूचाल आने वाला है, क्योंकि आखिर तो वो वायुपुत्र हैं। जब अर्जुन आते हैं तो सब कुछ एक अद्भुत प्रकाश से दैदीप्यमान हो जाता है। उसी प्रकार जब कर्ण आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई स्वर्ण प्रभा की बारिश हो रही है, उनका ऐसा कवच है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जब वो आते हैं तो वो अपने साथ एक अलग दृश्य, अलग नज़ारा लेकर आते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, नेक्स्ट थ्रू इट्स फायरी सून इन क्लॉटेड नॉट रेन टाइड बर्स्ट इन अपॉन टोर्न विंग्स ऑफ हीट। फिर ग्रीष्म ऋतु अपने विशाल काय पंखों पर उड़ रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अचानक कौन आता है? रेन, बारिश आती है, वर्षा ऋतु, और उसके सारे पंखों को छिन्न भिन्न कर देती है। उसी की हम लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्टार्टल्ड विद लाइटनिंग एयर्स अनक्वाइट ड्राउज। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? एक उमस होती है, आलस्य सा होता है, मेहनत एक और दूसरी ओर आलस्य। मेहनत भी करना पड़ता है गर्मी के समय, और फिर आलस्य कि आदमी सो जाए। तो उस ड्राउज को तोड़ने के लिए बारिश आती है, रेन टाइड बर्स्ट इन। वो भी अपना बर्छा भाला लेकर आती है, उसका बर्छा भाला क्या है? लाइटनिंग्स। लैश्ड विद लाइफ गिविंग स्ट्रीम्स द टॉरिड सॉइल, एक नए जीवन को लेकर आती है। वर्षा ऋतु, दो काव्यों में वर्षा ऋतु दो चीज़ों का प्रतीक होती है, बहुत से काव्यों ने इसको यूज़ किया है। एक होती है नवजीवन का, और दूसरा वो प्रतीक होती है उदासी का, और तीसरा प्रतीक होती है प्योरिफिकेशन का। तो पाश्चात्य देशों में आप देखेंगे जितनी उनकी पोइट्री है, आप देखेंगे कि उसमें रेन जब भी वर्णन हुआ है तो एक उदासी का वर्णन है उसके अंदर। यहाँ तक कि एक पूरी पोइट्री है जिसमें, जो थ्रू आउट फेयरवेल टू आर्म्स, जिसमें सब समय रेन का वर्णन है, उस समय की एक उदास मानसिकता का वर्णन दिखाने के लिए। बारिश में बहुत लोग उदास महसूस करते हैं। तो एक एक ऋतु का एक मानव चेतना के ऊपर असर होता है। पाश्चात्य देशों में वास्तव में वर्षा ऋतु नहीं होती है, देयर इज नथिंग लाइक वर्षा ऋतु। केवल भारत भूमि ऐसी अद्भुत भूमि है जहाँ छः की छः ऋतुएं होती हैं। पाश्चात्य देशों में रेन हमेशा एक बैकग्राउंड में रहती है, जैसे बारिश, आप कब निकलोगे, छाता लेके चलो, एक रेनकोट साथ साथ चलता है। लेकिन भारतवर्ष में जब बारिश होती है तो नवजीवन लाती है, उदासी नहीं लाती, बहुत दिन रहने से उदासी लाती है। रेन टाइड बर्स्ट इन अपॉन टोन विंग्स ऑफ हीट, स्टार्टल्ड विद लाइटनिंग्स एयर्स अनक्वाइट ड्राउज, लैश्ड विद लाइफ गिविंग स्ट्रीम्स द टॉर्पिड सॉइल, ओवरकास्ट विद फ्लेयर एंड साउंड एंड स्टॉर्म विंग डार्क। द स्टार डिफेंडेड डोर्स ऑफ हेवेंस डिम स्लीप। अब वो जब आती है तो उदासी क्यों आती है, साथ में क्या करती है, स्वर्ग का मार्ग भी अवरुद्ध कर देती है, बादल छा जाते हैं तो सूर्य नहीं प्रकट होता। जब सूर्य नहीं प्रकट होता है तो धीरे 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 अंदर में जीवनी शक्ति कम होने लगती है। इसीलिए बारिश का ये दोनों प्रभाव, ये कई लेवल पर, ये केवल सिंबल नहीं है, एक सत्य भी है। हम लोग सूर्य से पोषित होते हैं, अगर सूर्य बंद हो जाए, दो दिन ना रहे, तो अंदर अंदर व्यक्ति बहुत उदास फील करने लगेगा, उसकी मानसिकता बदलने लगेगी, रेस्टलेस हो जाएगा। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आजकल जब बहुत सारे बच्चे बहुत देर से उठते हैं, 12 बजे 1 बजे, और सब लोग दिन में भी घर के अंदर काम करते हैं प्रकाश आर्टिफिशियल लाइट लेके, इसका हम लोगों की मानसिकता पर असर पड़ता है। सूर्य में बहुत आवश्यक है निकलना चलना, ये हमको अलग तरह से पोषित करता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही आधे कैंटों में श्री अरविंद डाल रहे हैं। और फ्रॉम द गोल्ड आई ऑफ अर पैरामोर कवर्ड विथ पेक्ड क्लाउड वेल्स द अर्थ्स ब्राउन फेस। अब ये भी एक दूसरा वर्णन है कि जैसे पृथ्वी और सूर्य, पैरामोर कौन है, सूर्य का पैरामोर जो जिसको प्रेम करता है, अमूर शब्द प्रेम, प्रेमिका, सूर्य की प्रेमिका पृथ्वी है, और सूर्य उसको ढक लेता है। कैसे ढक देता है, बादलों से ढक देता है। और इसको हम रिवर्स करके भी देख सकते हैं कि पृथ्वी का प्रेमी जो सूर्य है वो स्वयं को ढक लेती है बादलों के आवरण से। कितना सुंदर ये चित्र है। आर्मीज ऑफ रिवोल्यूशन क्रॉस द टाइम फील्ड द क्लाउड्स अनएंडिंग मार्च बिसीज द वर्ल्ड टेम्पेस्ट प्रोनंसिएमेंटोज क्लेम द स्काई एंड थंडर ड्रम्स अनाउंस द एम्बैटल्ड गॉड्स। या एक तीसरा इमेज भी आती है कि ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और बार बार जो बादल गर्जन करते हैं मानो संकेत दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि अभी कोई आएगा, अभी कोई आएगा, कौन आएगा ये नहीं मालूम, अनाउंस कर रहे हैं जैसे एक सभा में अनाउंसमेंट होता है। इट ट्रेवलर फ्रॉम क्वाइट, इट ट्रेवलर फ्रॉम अनक्वाइट नेबरिंग सीज द डेंस मेंड मॉनसून रोड नेइंग थ्रू अर्थ्स आवर्स। क्या इमेज है, इट ट्रेवलर फ्रॉम नियर बाई अनक्वाइट सीज। अब बादलों को कैसे बता रहे हैं श्री अरविंद, ये सच में अगर मेघदूत जरूर पढ़ी होगी हम सब में से किसी ने, अद्भुत चित्र है उसमें कालिदास का। और श्री अरविंद ने इसको बताया भी है कि कालिदास अपने आप में एक विभूति थे, और मेघदूत कुमार संभवम विक्रम उर्वशी एक अद्भुत चित्रण है मानव जीवन का, और उससे जुड़ी सारी पहेलियों का, उसके अंतःकरण का, ये सब चित्रण है। मेघदूत की कहानी में पूरा बादल को एक मनुष्य का मानो एक जीवंत रूप दे दिया है कवि ने। जो इसका जो मेन कैरेक्टर है, एक यक्ष है जो अपनी प्रेमिका से बहुत दूर है, उसको पनिशमेंट मिला है कि तुम उस हिल में चले जाओ और वहाँ तुम पनिशमेंट में रहोगे। अब वो समय नहीं है जब मोबाइल है और मोबाइल से बात नहीं कर सकता है, लेकिन बात करने की इच्छा हो रही है, तो मेघ जो आ रहे हैं उनको बता रहा है कि हे मेघ, तुम उसी दिशा में जा रहे हो जहाँ मेरी प्रेमिका है, तो तुम ऐसा करो, तुम ये मैसेज लेके जाओ। इसलिए इसको इंग्लिश में श्री अरविंद ने ट्रांसलेट किया है द क्लाउड मैसेंजर, मेघ दूत। तो दूत बोलता है कि मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन है, तो वर्णन करता है कि कैसे पहचानोगे तुम कौन है, वो ये नहीं कह सकता ये नाम होगा, घर का एड्रेस ये होगा, तो वर्णन करता है आंतरिक पर्सनालिटी का वर्णन कि ऐसे से तुम पहचानोगे, तो बहुत अद्भुत है। तो उसी प्रकार से श्री अरविंद यहाँ पर कहते हैं कि समुद्र अनक्वाइट जो आंदोलित हो रहा है, वो अपना मैसेज मैसेंजर के रूप में भेज रहा है बादलों के तरह से। ट्रेवलर फ्रॉम अनक्वाइट नेबरिंग सीज द डेंस मेंड मॉनसून। मॉनसून अपने आप में एक देवी का रूप, और उसके केश मेन, मेन कहते हैं जैसे घोड़ा होता है उसके केश, या सिंह के केश, या लंबे केश, उसको कहते हैं मेन, डेंस मेंड। बादल ऐसा लग रहा था मानो एक महान विशाल काय अश्व, और मॉनसून एक विशाल काय अश्व की तरह आकाश से गुजर रहा है। कहाँ से आया ये अश्व, ये आ रहा है समुद्र से, अनक्वाइट सीज, अश्व का रूप दिया है नेइंग, क्योंकि शेरविंद शब्द यूज करे नेइंग, ये घोड़े की आवाज़ है, हिन हिनाना, वो हिन हिनाता हुआ गुजर रहा है, और उसके जो बाल हैं वो चारों तरफ हिल रहे हैं, केश है। क्या वर्णन है, बृहदारक उपनिषद में ऐसे वर्णन है काल पुरुष का, तो ये वर्णन हम लोग यहां देख रहे हैं। थिक नाउ द एमिसरी जेवलिन्स, पहले जैसे एक कोई आ रहा है तो अपने आने की एक योद्धा है, सूचना कैसे देगा योद्धा, योद्धा एक भाला फेंकेगा जो जाकर आ जाएगा तो आपको पता चलेगा। जैसे महाभारत में हम देखते ना, जब अर्जुन किसी को चैलेंज करते हैं या अभिमन्यु या कर्ण, तो एक तीर मारते हैं जो पांव के पास गिरता है तो पता चल गया कि ये आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है, तीरों की बौछार होती है। ये तो पहला अनाउंसमेंट था, वार्निंग थी कि आप सचेत हो जाओ, अगर सचेत नहीं हुए तो नेक्स्ट जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। तो श्री अरविंद कहते हैं वो जैवलिन्स बरछा, पहले दो चार बूंदें आई, फिर वो अनेकों अनेकों बरछे बरसने लगे। एनॉर्मस लाइटनिंग स्प्लिट द होराइजन्स रिम, और उसके साथ ही ये बरछे जैसे बरसते थे उसके साथ ही मानो बिजली कौंध कौंध कर स्वर्ग को ही दो भागों में बांट रही थी। एंड हर्ल्ड फ्रॉम द क्वार्टर्स एज फ्रॉम कंटेंडिंग कैंप्स मैरिड हेवेंस एजेस स्टीप एंड बेयर एंड ब्लाइंड। अब एक तरफ से बारिश हो रही है, दूसरे तरफ से बिजली कौंध रही है, तो लग रहा है कि दो सेनाएं युद्ध कर रही हैं, कंटेंडिंग कैंप्स, और इस प्रकार से स्वर्ग और भूमि का इस ऋतु में भी मिलन हो रहा है। ग्रीष्म ऋतु में एक प्रकार से मिलन होता है, वर्षा ऋतु में दूसरे प्रकार से मिलन होता है। एंड हर्ल्ड फ्रॉम द क्वार्टर्स एज फ्रॉम कंटेंडिंग कैंप्स मैरिड हेवेंस एजेस स्टीप एंड बेयर एंड ब्लाइंड ए सर्ज एंड हिस एंड ऑनसेट ऑफ ह्यूज रेन द लॉन्ग स्ट्रेट स्लीट ड्रिफ्ट क्लैमर्स ऑफ विंग्ड स्टॉर्म चार्ज। स्लीट ड्रिफ्ट क्या वर्णन है, ओला जब बरसता है, अभी अब धीरे धीरे बारिश और तेज होने हो रही है, अब केवल वो बारिश बर्छी की तरह चुभ नहीं रही है, ओले बरस रहे हैं जो धरती के भूमि के ऊपर एक हल्की बर्फ की चादर, स्लीट, स्लीट कहते हैं जो ओले बरसने से हल्की बर्फ की चादर आ जाती है, स्लीट ड्रिफ्ट वो धरती पर जमने लगती है। गिफ्ट हेवन का धरती को, थ्रॉन्ग्स ऑफ विंड फेसेस रशिंग ऑफ विंड फीट हरिंग स्वेप्ट थ्रू द प्रोन एफ्लिक्टेड प्लेन्स। मानो योद्धा का वायु देवता के रूप में चारों तरफ इधर से उधर जा रहे हैं। हेवेंस वाटर्स ट्रेल्ड एंड ड्रिबल्ड थ्रू द ड्राउंड लैंड देयर देन ऑल वाज ए स्विफ्ट स्ट्राइड ए सिबिलेंट रेस और ऑल वाज टेम्पेस्ट शाउट एंड वाटर्स फॉल। फिर अंततो गत्वा क्या होता है, या तो सब कुछ जल प्लावित हो जाता है, सब कुछ उसमें डूब जाता है। इसी तरह हम लोगों के जीवन में भी होता है, एक ऋतु आती है जब प्योरिफिकेशन और धीरे धीरे शुरू होता है और बढ़ता 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 एक समय आता है जब भगवान की प्रेम सुधा सब डुबा देती है और अच्छा भी और बुरा भी सब कुछ अंदर से साफ कर देती है। तो फिर वो एक स्मूथ, श्री अरविंद इसका वर्णन कर रहे हैं, सब कुछ एक स्मूथ जर्नी की तरह और ऑल वाज टेम्पेस्ट शाउट एंड वाटर्स फॉल। इसके बाद एक और मूड होता है, वर्षा ऋतु के अनेक मूड होते हैं, वो सारे मूड सारे भाव श्री अरविंद प्रकट कर रहे हैं। ए डिमनेस सैग्ड ऑन द ग्रे फ्लोर ऑफ डे इट्स डिंजी स्प्रॉलिंग लेंथ जॉइंड मॉर्न टू ईव वैलोइंग इन स्लज एंड शावर इट रीच्ड ब्लैक डार्क डे ए हाफ डार्कनेस वोर एज इट्स डल ड्रेस लाइट लुक्ड इन टू डॉन्स टार्निश्ड ग्लास एंड मेट इट्स ओन फेस देयर ट्विन टू ए हाफ लिट नाइट्स। बाहर से वर्णन क्या है, रात भर बारिश हुई तो सुबह कब हुई पता नहीं चला, क्यों बादल हैं, तो बादल के थ्रू जब कोई सुबह उठ के देखता है तो अचंभित होता है, लगता है पता नहीं दिन हो गया है कि रात ही चल रही है, तो दिन भी रात जैसा प्रतीत हो रहा है। इसका आंतरिक संकेत क्या है, एक लेवल पर जब पहले मनुष्य प्राण तत्व में पूरा जीवन जीता है, जब प्योरिफिकेशन आके चली जाता सब हटा देती है तो उसके अंदर वो प्राण तत्व शांत हो जाता है, लेकिन नई चीज प्रकट नहीं हुई है, वो जॉय चला गया जिसमें वो बाहर से जॉय लेता था, लेकिन जो अंदर में डिलाइट आनी है वो प्रकट नहीं हुआ। तो ये एक बीच की अवस्था है जिसमें दिन और रात समान दिख रहे हैं, तो ये भी एक वर्णन है और ये भी जरूरी है उस अवतरण के लिए। तो धरती वैलोइंग इन स्लज, जब धरती में चरण रखता है व्यक्ति तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कीचड़ कादो सब कुछ, क्योंकि सफाई हुई है ना, तो जब सफाई होती है तो सारी गंदगी जो नाले में छिपी हुई थी बाहर आ जाती है। यही चीज़ हम लोग आश्रम में भी देखते हैं, व्यक्ति के अंदर, समूह के अंदर। जैसे भारतवर्ष में अभी सफाई चल रही है, केवल बाहर सफाई नहीं चल रही है, अंदर में तो आप देखें कहीं रिवॉल्यूशन हो रहा है, कहीं धरना हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मार्केट क्रैश कर रहा है, क्योंकि सफाई चल रही है। वैसे ही व्यक्ति के जीवन में या आश्रम के जीवन में जब सफाई चलती है तो जितनी अंदर की गंदगी है बाहर आ जाती है। तो लोग कहते हैं अरे अरे देखो देखो इसको, ये क्या हो रहा है, इतना खराब आदमी, या देखो 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 ये क्या हो रहा है इस समूह में। वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है, सफाई चल रही है। अच्छा है, साफ हो जाएगा तो सब कुछ सुपर रिन की चमकार से भरा हुआ होगा। लेकिन ये प्रोसेस है, ये इवोल्यूशन की प्रोसेस है। डाउन पोर एंड ड्रिप एंड सीपिंग मिस्ट स्वेड ऑल एंड टर्न ड्राई सॉइल टू बॉग एंड रीकिंग मड। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सूर्य आ गया, आपने धरती को तैयार कर दिया हल फावड़े से, मेहनत की, लेकिन बिना बारिश के धरती नरम नहीं होगी। बारिश किसके जीवन में प्योरिफिकेशन हो गई है इसका एक ही लक्षण होता है, ऐसे व्यक्ति में बहुत विनम्रता होती है। जिसके अंदर प्योरिफिकेशन की प्रोसेस नहीं हुए बहुत एरोगेंट होता है, सोचता है मैं ही हूँ, साधक हूँ, सिद्ध हूँ, उच्च कोटि का मनुष्य हूँ, बाकी सब। लेकिन जब प्योरिफिकेशन हो जाता है तो सबको गले मिलता है, कहता है हाँ मैं और तुम एक ही हैं। क्योंकि उसको पता होता है कि वो भी ग्राउंड लेवल उसने टच कर लिया है, यही अंतर होता है। नहीं तो प्रारंभ में साधना हो रही है, टॉयल, सूर्य की तरह तेज, ये साधना है। तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम देखे कितने ऊपर उठोगे, फिर बारिश को भेजते हैं, अभी नहीं, अभी तुम्हारी भूमि बहुत कठोर है। बहुत ऐसे साधक होते हैं जो बिना पवित्रता के बहुत कठोर हो जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं, विश्वामित्र की तरह। तो उनके जीवन में भगवान एक बारिश भेजते हैं प्योरिफिकेशन की, घटनाक्रम के रूप में, और फिर वो धीरे धीरे पूरी तरह, जब वो कीचड़ कादों में लेट जाते हैं, कहते हैं भगवान बस बहुत हो गया, तब फिर मेडिटेशन का सीजन आता है। मेडिटेशन का सीजन है ऑटम, और फिर स्प्रिंग, नई चेतना का जन्म। तो ये प्रोसेस है, सबके जीवन में आता है, व्यक्ति के भी, समूह के भी। तो यहां पर है एंड टर्न ड्राई सॉइल टू बॉग एंड रीकिंग मड। अर्थ वॉज ए क्वागमायर, हैवन ए डिसमल ब्लॉक। ऐसे समय क्या होता है, जब व्यक्ति बिल्कुल नीचे पड़ा होता है, उसको ना भूमि रास आती है ना स्वर्ग रास आता है। जब प्रारंभ में व्यक्ति साधना करता है तो हाँ भगवान ये अनुभव वो अनुभव, फिर प्योरिफिकेशन के बाद वो कहता है विनम्र तरह से हम लोग चल रहे हैं, उसको ना स्वर्ग दिखता है ना भूमि, फिर ये सब साफ होता है। तो ये एक बीच की प्रोसेस की वर्णन है। नन सॉ थ्रू डैंक ड्रेंस्ड वीक्स द डंजी ऑन सन। कई हफ्तों तक ये प्रोसेस चलती है, जब सूर्य नहीं निकलता लगता है हम किस अंधकार में चले गए हैं। उस समय उदासी होती है, जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर थोड़ा बीच में चलती है तो अच्छा है सड़क साफ हो रही है, फिर और जब चलती है तो कहते हैं ये भगवान कब समाप्त होगी। तो ये फिर एक तीसरा मूड आता है वर्षा ऋतु में, डिप्रेशन शुरू होता है। इवन व्हेन नो टर्मोइल वेक्स्ड एयर्स सॉम्बर रेस्ट और ए लैंड और ए फेंट रे ग्लिमर्ड थ्रू वीपिंग क्लाउड्स एज ए सैड स्माइल ग्लीम्स वेल्ड बाई रिटर्निंग टीयर्स All promised brightness failed at once denied or soon condemned died like a brief-lived hope. तो उस समय क्या होता है जब व्यक्ति इस प्रोसेस से गुजरता है, वर्षा की अतिरेक अवस्था, आंसू आंसू, हे भगवान कहाँ हो, कितना अच्छा मेरा जीवन चल रहा था, अनुभव हो रहे थे, कहाँ खो गए, दिखाई नहीं दे रहे। कभी कभी भगवान की स्माइल दूर से दिखाई दे भी जाती है तो फिर से वही मूड आ जाता है। सच ए रियल विविड डिस्क्रिप्शन, जो भी इसे गुजरा है ठीक समझ जाएगा कि ये क्या वर्णन हो रहा है। वो कहाँ हो आप, टीयर्स, और उन बादलों के थ्रू कभी कभी बीच में सूर्य का हल्का सा ग्लिम्स, शायद अब आने वाला है मौसम, नया मौसम, और फिर लेकिन बारिश। देन ए लास्ट मैसिव डिल्यूज थ्रैश्ड डेड मायर। लेकिन भगवान तो परफेक्शनिस्ट हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अंत में एक और भयंकर रूप से बारिश होगी, जो कुछ बचा है शेष अवशेष सब कुछ ठोक पीट के भगवान मट्टी में मिला देंगे, क्योंकि इसमें नई चीज का जन्म लेना है। तब साधक शिशु बन जाता है, तब ये नहीं कहता मैं साधक हूं, तपस्वी हूं, योगी हूं, साधु हूं, संत हूं, कहता है मैं बच्चा हूं। उसको वापस उसमें चला जाता है। एंड ए सबसाइडिंग मटर लेफ्ट ऑल स्टिल और ओनली द मडी क्रीप ऑफ सिंकिंग फ्लड्स और ओनली ए विस्पर एंड ग्रीन टॉस ऑफ ट्रीज। और ये अंत में बारिश एक मटर के रूप में हल्की सी आवाज ध्वनि पिटर पैटर होती हुई टप 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 करती हुई धीरे धीरे चली जाती है। और ये वर्णन है दो सीजन का, ग्रीष्म ऋतु का और वर्षा ऋतु का। लेकिन अभी धरती का मूड बदलना है, इतना काफ़ी नहीं है कि हम प्योरिफिकेशन हो गया अब सीधा भगवान मिल जाएंगे, नहीं, अब रियल योग यात्रा प्रारंभ होगी। जब सूर्य होता है तो साधना की तैयारी होती है, एफर्ट होता है, आदमी रेस्टलेस इधर उधर भागता है, काम करता है, मैं माता जी का काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट हूँ। फिर भगवान कहते हैं अच्छा अब ये सब हो गया, अब रियल साधना होगी, तो बारिश होती है, प्योरिफिकेशन होता है, उसके बाद मूड चेंज होता है और शिशिर। शिशिर ऋतु में क्या होता है, सब कुछ लुप्त होकर ध्यान केंद्रित जीवन प्रारंभ होता है। ये हम लोग अगले वेडनेसडे को प्रारंभ करेंगे।